संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बारह भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें धर्म भावना के अंतर्गत ग्रस्त धर्म की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन कल तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक आए थे। जब पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लेते हैं तो उसके बाद हमारी और खर्चे बढ़ेंगे और साधन हमें जुटाने पड़ेंगे, और जिनकी अपेक्षा नहीं है ऐसी जिम्मेवारी हमारे माथे पे आएगी, ये बात समाप्त हो जाती है। जो चीज़ अभी है हमारे पास, जितने बच्चे हैं पत्नी है, तो उतने तक की ही जिम्मेवारी हमारे माथे पर रह जाती है। अब भविष्य में और संतान होने की संभावना नहीं रहती है, शादी करने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए हम ये नहीं सोच सकते हैं कि न मालूम भविष्य में हम पर कितने अचानक कौन से खर्चे आ पड़ेंगे, जिसके लिए हमें और अधिक परिग्रह जोड़ने की आवश्यकता है। एक तरीके से वो पड़ाव है कि जिसके ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने के बाद वो आगे बड़ी तेजी से साधु बनने की तैयारी की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसने भविष्य में बढ़ने वाले और जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको एक तरीके से समाप्त कर दिया है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद आती है आरंभ त्याग प्रतिमा, आठवीं प्रतिमा। क्या उसने ब्रह्मचर्य ले लिया है तो अब वो इस पोजीशन में आ गया है कि धंधा पानी भी नहीं करे, जो भी उसके पास संपत्ति है उस संपत्ति से ही वो अपनी आजीविका के कार्य संपन्न कर सकता है, और कदाचित उसे करना भी पड़े तो बहुत शुद्ध सात्विक धंधा, व्यापार अथवा नौकरी, कुछ भी जिसमें बिल्कुल अहिंसक हो, जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, जिसमें किसी भी प्रकार का झूठ फरेब नहीं हो, अन्याय नहीं हो, अनीति नहीं हो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक आजीविका हो, क्योंकि उसके अब खर्चे भी सीमित हो गए हैं, इसलिए वो अपना सीमित आमदनी में खर्च अच्छी तरह से चला सकता है। यदि उसके पास इतनी आमदनी है पुरानी संपत्ति के आधार पर कि जिसके आधार पर वो अपना जीवन आसानी से चला सकता है, तो फिर नया कुछ करने का रह ही नहीं जाता है। ऐसी स्थिति आ जाने से फिर धीरे धीरे वो परिग्रह, आरंभ, व्यापार, धंधा, बिजनेस, ये सारी चीजें की तरफ वो से विरक्त हो जाता है। जैसे कि हमने दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया था, तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में संतान वगैरह होने की बात थी ना, तो वो ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचारों में भी ये बात कही गई थी कि दूसरे के बच्चे बच्चियों के संबंध करने के विकल्प में उलझना, चिंता करना, उसके लिए खोजना कराना, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे उस व्रत में दोष देने वाला है। तो वहां तो परविवाहकरण की बात थी दूसरों के, क्योंकि जो अपने बाल बच्चे हैं उनके संबंध तो उन्हें करना ही पड़ेंगे, कौन करेगा, कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी। तो परस्त्री सेवन का त्याग था, तो उसमें इतनी मर्यादा आ गई थी कि दूसरे की संतानों की शादी विवाह में भी इन्वॉल्व होने की उसे जरूरत नहीं रही थी। शादी में जाके शामिल होना आध घंटे के लिए अलग बात है, और उसके लिए चिंता करना, लड़का लड़की खोजना, बताना, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना अलग बात है। लेकिन अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद तो अपनी संतान की बात की बात भी नहीं रह गई है। इसलिए जब वहां पर विवाहकरण का निषेध था, तो यहाँ यद्यपि ऐसा कोई कथन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यहाँ अपनी संतान में भी के कार्यों में भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये बात अलग है। छोटी संतान हो और उसके कुछ करने का कुछ विकल्प आए तो उसकी भी मर्यादा है, और लंबे काल तक वो बात चलने वाली नहीं है। वैसे मैंने जो कल कहा था कि समझदारी की और बुद्धिमानी की बात तो ये है कि हम जब और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आरंभ परिग्रह का परित्याग पूरी तरह से करना चाहते हैं, तो हमको बहुत पहले से ये ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए, तो जिससे कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएं और धीरे धीरे हम निवृत्ति लेने में हमें किसी तरह की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। जैसे कि ये भी बताया गया था कि सामायिक शिक्षा व्रत का ही सामायिक प्रतिमा में और फल फूल करके पल्लवित होकर के आगे आता है। प्रोषद प्रतिमा में अपने और गरिमा के साथ आता है। ऐसे ये ब्रह्मचर्याणु व्रत ही ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा में और पूरी तरह से उसका फल हमारे सामने आ जाता है। अब जो परिग्रह परिमाण व्रत था वो उसको हम अपरिग्रह महाव्रत में कैसे बदलें, उसकी दिशा में हम बढ़ते हैं, तो उसमें आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग, ये तीन प्रतिमाओं का प्रसंग आता है। ये तीनों प्रतिमाओं का सामान्य स्वरूप क्या है जो सबकी समझ में साधारणतया आए वो मैं स्पष्ट करता हूं कि हमारे जो गृहस्थी के कार्य है ना, उन कार्यों को बोलते हैं हम आरंभ। इसमें दुकानदारी की बात नहीं है, वो धंधे वाले काम को नहीं, उसको तो हमने उद्योग अलग नाम दिया ना, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा, ऐसे हमने अलग भेद किए ना। इसलिए आरंभ में क्या चीज है, हम मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो हमारा घर में अभी तक हमारी पारिवारिक परंपरा है उसके हिसाब से जो महिलाएं काम संभालती हैं वो मोटे तौर से आरंभ है, और जो पुरुष संभालते हैं वो मोटे तौर से उद्योग है। उद्योग में व्यापार वगैरह सब आ सकता है, फिर भी धर्म के क्षेत्र में हम ऐसा बंटवारा तो नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए एक ब्रह्मचारी पुरुष है और उसने अपनी पत्नी भी नहीं रखा है, उसका भी साथ नहीं रखा, अथवा नहीं है कि शादी नहीं की, अथवा स्वर्गवास हो गया समझ लीजिए, तो फिर वो आखिर अपने भोजन की व्यवस्था तो खुद करेगा ना, करना चाहिए। जब तक वो गृह त्यागी नहीं हुआ है, जब तक वो क्षुल्लक ऐलक नहीं हुआ है, ग्यारहवीं प्रतिमा तक नहीं पहुंचा है, तब तक उसके स्वयं के भोजन आदि की पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी उसके स्वयं की है। और ब्रह्मचर्य का तो अर्थ यही है कि हम किसी का साथ नहीं रखना चाहते हैं, पत्नी का साथ नहीं तो बच्चों का साथ नहीं, तो फिर तो हमें घर त्यागा नहीं है, तो भिक्षावृत्ति संभव नहीं है। तो वो सारी व्यवस्था पैसे की और बाजार से सामग्री लाकर बनाकर खाने की, वो सारी जिम्मेवारी स्वयं की आ जाती है, और क्योंकि उसका आहार बहुत पवित्र हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे मुनियों राजाओं का ही आहार क्यों ना हो, इसलिए बाजार में कहीं भी जाके खा लेगा ये बात भी बनती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो सारी जिम्मेवारी उसके माथे पर स्वयं है। इस बारे में आजकल चिंतन जैसे बंद ही हो गया है, क्यों? क्योंकि जो लोग जरा से भी धर्म के क्षेत्र में आते हैं, पहली भी प्रतिमा नहीं ली, अथवा पहली ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, उस वक्त से ही वो अपने को साधु समझने लगते हैं, गृहस्थ मानने को उनका मन अपने को तैयार ही नहीं होता, और वो सारा समाज के जो गृहस्थ श्रावक हैं उन पर डालते हैं और उन्हें उपदेश देना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारी सारी व्यवस्था करें, जबकि वे स्वयं भूल जाते हैं कि वे भी स्वयं एक अभी श्रावक ही हैं, क्योंकि ये 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं इस श्रावकों की ही हैं, जबकि उन्होंने घर नहीं छोड़ा है, परिवार नहीं छोड़ा है, परिग्रह नहीं छोड़ा है, रुपया पैसा रखते हैं, मकान जायदाद रखते हैं, ये सारी जब चीजें उन्होंने रखे हैं, आरंभ नहीं छोड़ा है, परिग्रह नहीं छोड़ा है, तो फिर अपनी ये सारी जिम्मेवारी भी दूसरे के माथे पर कैसे मरते सकते हैं। इसमें एक बहुत मरम की बात है जो गंभीरता से विचार करने की है। इसमें किसी भी बिना पक्षपात के हम सच्चे हृदय से विचार करें कि हमारे जो मुनिराजों का आहार होता है जितना पवित्र शुद्ध सात्विक, उतना ही पवित्र आहार एक वृत्ति ग्रस्त का होता है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सम्यक दृष्टि ग्रस्त का होता है और होना चाहिए। चौथे गुणस्थान के ऊपर ऊपर से ही इतना पवित्र आहार गारंटी से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुनिराज हैं उनकी चर्चा अपन अभी आगे करेंगे, वे उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। उनके उद्देश्य से बनाया हुआ जो भोजन है वे नहीं लेते हैं। तो अब गृहस्थ या तो अपने लिए बनाए और या उनके लिए बनाए, और अपना उसका भोजन यदि इतना पवित्र हो कि अपने बनाए हुए भोजन में से यदि मुनिराज को भोजन कराने के लायक वो भोजन नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर वो भोजन मुनिराज के लिए ही बनाना पड़ेगा और वो भोजन उद्दिष्ट हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कोई भी गृहस्थ का जीवन इतना पवित्र नहीं है, उसके खान पान संबंधी व्यवहार इतना पवित्र नहीं है कि वो प्योर अपने लिए शुद्ध अपने लिए बनाए और उसमें मुनिराज आ जाए तो उन्हें पड़का ले और उन्हें आहार दे दे तो उनको कोई विघ्न बाधा उसमें नहीं हो, उसमें कोई अपवित्रता नहीं हो। इसलिए निश्चित रूप से फिर उनके ही उद्देश्य से बनाना पड़ता है, जैसे हम आजकल चौका लगाना कहते हैं। यद्यपि ये बात भी परम सत्य है कि गृहस्थ ने तो मुनिराज के उद्देश्य से बनाया है, लेकिन मुनिराज का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। मुनिराज ने तो अपने कह के नहीं बनवाया है ना कि मेरे लिए ऐसा भोजन बनवाओ, लेकिन फिर भी यदि उनके उद्देश्य से बनाया गया है और उन्हें पता चलता है तो भी वो बात विचारणीय हो जाती है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अनुवृत्ति लोग जो अनुवृत्तियों का जैसा पवित्र भोजन होता है, महावृत्तियों का भी वैसा ही पवित्र होता है, और महावृत्तियों का जैसा पवित्र भोजन होता है अनुवृत्तियों का भी वैसा ही पवित्र भोजन होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, नहीं होना चाहिए, अन्यथा उद्दिष्ट त्याग वाली बात नहीं बनेगी। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो उनका भोजन इतना पवित्र होना चाहिए, तो इतने पवित्र भोजन की व्यवस्था तो वे स्वयं अपने आप ही करेंगे ना। वे आवृत्तियों के भरोसे यदि अपने भोजन की व्यवस्था छोड़ देंगे, जैसे कि मुनिराजों तो वृत्तियों के भरोसे छोड़ते हैं, तो वो आवृत्ति उतना शुद्ध पवित्र भोजन करता ही नहीं है, तो वो क्या समझे वो जाने भी। तो ऐसी स्थिति में उनका भोजन बहुत पराधीन हो जाएगा। तो उनकी स्वयं की जिम्मेवारी है कि वे अपने भोजन की व्यवस्था करें। जब वे दूसरों का सहयोग करना छोड़ना चाहते हैं और एकाकी जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया, संतान से भी अपने को लिया, क्योंकि सारे संतान ने तो ब्रह्मचर्य नहीं ले लिया, उसने तो कोई परिग्रह नहीं त्याग कर दिया, परिग्रह का परिमाण व्रत तो आपने लिया है, लेकिन बेटा तो करोड़ों कमाएगा ना, और यदि पत्नी ने नहीं लिया है तो उसकी भी इच्छा हो सकती है। पत्नी ने परिग्रह परिमाण व्रत लिया है और पति ने नहीं लिया है तो पति तो अरबों इकट्ठे करेगा। ऐसी स्थिति में जिस दिन वो परिग्रह का परिमाण लेगा उसी दिन उसे एक तरह से अपने सारे परिवार से अपने को पृथक स्थापित करना ही पड़ेगा, फिर उनके साथ कंबाइंड उसका कुछ नहीं हो सकता, साझे में कुछ नहीं हो सकता, पत्नी का भी। क्यों? ये कोई इनकम टैक्स की बात नहीं कह रहा हूं मैं। पत्नी ने अनुमृत लिए हैं, पति ने नहीं लिए, तो फिर पत्नी पति के साथ साझे में रहे तो उसका क्या अर्थ हो गया? फिर मुझे संपत्ति अपनी अलग ही करनी पड़ेगी, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सब चीजें, और अपनी व्यवस्था स्वयं जुटाने की उसकी जिम्मेवारी है। जब तक वो चुल्लक एलक की अवस्था में नहीं पहुंचता है तब तक, क्योंकि आजकल ऐसा होता नहीं है। मैंने अपने धर्म के दर्शन किताब में एक वाक्य लिखा है कि महावृत्तियों का भार अनुवृत्तियों को उठाना था, लेकिन आज तो वे दोनों ही समाज के ऊपर अपना भार डालते हैं और अवृत्तियों पर छोड़ देते हैं, और अवृत्ति तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अनुवृत्ति गृहवासी थे और महावृत्ति वनवासी थे। अब दोनों ही न गृहवासी गृहवासी रहे हैं और न वनवासी वनवासी रहे हैं, दोनों एक साथ धर्मशाला वासी हो गए हैं। उनने भी वन छोड़कर धर्मशालाओं में रहना आरंभ कर दिया है, और ये जो ग्रस्त जिन्हें अपना घर बसा के रखना चाहिए था, ये भी जाके समाज की धर्मशालाओं में रहने लग गए हैं, और खाने पीने की व्यवस्था का हिसाब किताब कुछ अपने पास रखते ही नहीं है। पूरी तरह से अवृत्ति समाज पर डिपेंड हो गए हैं। इसलिए शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन है और उस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनमें बहुत ही विरोधाभास नजर आने लग गया है। यद्यपि पहले भी बसतिकाएं हुआ करती थी और श्रावक लोग ग्रस्त लोग ही जंगल में एक गुफाओं के रूप में उन्हें बनाते थे, कुछ तो ओरिजिनल गुफाएं होती थी और कुछ बनाई भी जाती थी, और कुछ गुफाएं ओरिजिनल जैसी होती थी उनको साधा संवारा जाता था कि जिससे वो हमारे साधु संतों के रहने लायक हो जाएं। लेकिन साधने संवारने का अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें किवाड़ लगा दिए जाएं और ताले कुंजी की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ऐसा होते ही तो वो परिग्रह हो जाती है, और वैसे जो वे नेचुरल हों और ग्रस्तों ने थोड़ी बहुत उन्हें संभाल दिया हो, और जिसमें हम आराम कर रहे हैं, साधु आराम कर रहे हैं, वहां कोई दूसरे को आने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। रास्ते में राहगीर जा रहे हैं, बरसात आ गई है, वे भी गुफा में आएंगे, किवाड़ लगे होंगे तो कैसे जाएंगे? पशु पक्षी भी आ सकते हैं, उन्हें भी तो ऐसा सहारा कुछ चाहिए ना विषम मौसम में, तो उनमें रहते थे और उनको बसतिकाएं बोलते थे, और जो ग्रस्त ही बनाते थे जगह जगह पर, जिन जंगलों में साधु लोग रहते थे उनके आसपास के एरियों में, जिससे हमारे परम पूज्य संत हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। अब वो धीरे धीरे नगर के पास, और नगर के पास से फिर नगर में, और फिर बीच नगर में आ गई है। तो इन सारी स्थितियों में वो जो ब्रह्मचारी है सप्तम प्रतिमाधारी, वो भी अपने को एक त्यागी साधु समझने लगा है। यद्यपि वो साधु होने की तैयारी में है, लेकिन अभी तो वो वास्तव में ग्रस्त ही है, क्योंकि ये 11 प्रतिमाएं ग्रस्तों की ही है। श्रावक धर्म की में ये 11 प्रतिमाएं आती हैं, और सातवीं प्रतिमा की तो बात जाने दो, जैसे कि मैंने कहा कि पहली प्रतिमा ली है और घर छोड़ दिया, और कोई प्रतिमा ली ही नहीं है, बस अगला एक चदरा ओढ़ लिया और अपने को गृह त्यागी साधु घोषित करके मानने लगा और समाज पर रौब गांठने लगा और घर छोड़ दिया और चूल्हा चक्की मिटा दिया, कभी उसे बनाने खाने का तैयारी ही नहीं रखी, घर में बर्तन ही नहीं रखे, कोई चीज ही नहीं रखी, घर ही नहीं रखा, तो फिर क्या होगा उसकी? इसलिए ये उनकी समझ में नहीं आता है कि ये इस प्रतिमा का वास्तविक क्या स्वरूप होता है। जब हम ये बात कहते हैं कि वो रोटी बनाएगा तो आरंभ त्याग करे, तो अभी तक उसने आरंभ त्याग नहीं किया था। वो तो कहता मैंने तो रोटी बनाने का काम पहली प्रतिमा नहीं ली थी उसके पहले से ही छोड़ दिया है। क्यों? दर्शन में वृत्त प्रतिमाधारी नहीं है, सामायिक प्रतिमाधारी नहीं है, सम्मा दर्शन का भी कोई ठिकाना नहीं है। सम्मा दर्शन का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसकी कोई खबर नहीं है, उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है। और वो कहता मैंने आरंभ त्याग दिया, अब मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगा, मेरा खाना बनाने की जिम्मेवारी दूसरों की है। एक चीज तो वो जो आठवीं प्रतिमा में जाके छूटती थी वो उसने पहली प्रतिमा भी नहीं ली है और वहां से ही छोड़ दी है। और दूसरी चीज वो जो बड़े बड़े में साधु, जैसे मैंने बोला ना कि साधु संतों के जीवन में होता है, वो भी यहां से पहले से छोड़ के रख दिया है। और कई चीजें ऐसी हैं जो वहां नीचे ही छोड़ देनी चाहिए थी और उसने अपनी साथ साथ प्रतिमा लेकर के भी, और उन चीजों को उसने नहीं छोड़ा है। तो ये क्यों? क्योंकि ये 11 प्रतिमाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे आचार्यों ने चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखा, अध्यात्म शास्त्रों में उसकी अंतरंग परिणति की बात है, चरणानुयोग शास्त्रों में कितनी कथा का अभाव कहाँ होता है और उसकी परिणति कैसी होती है, वो निमित्त निमित्त संबंध की दृष्टि से कथन है। और प्रथमानुयोग के शास्त्रों में अनेक उदाहरण ऐसे त्यागी तपस्वियों के जीवन चरित्रों में भरे पड़े हैं, उन्हें हम बारीकी से देखें और अध्ययन करें तो हमें ये ख्याल आ सकता है कि हमारी ये सातवीं प्रतिमा की स्थिति क्या होती है, क्या होनी चाहिए। कहां तो ये बात थी कि दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया था, खुद के बाल बच्चे हो रहे थे, तो भी किसी दूसरे के बाल बच्चों की शादी विवाह की प्रसंग में की चर्चाओं में वो उलझता नहीं था, उनकी चिंता नहीं करता था, उनका मेल मिलाप बैठाने की कोशिश नहीं करता था। ये शास्त्र की मर्यादा तो ये है दूसरी प्रतिमा में। और कहां ब्रह्मचारी हो गया है, पूरा ब्रह्मचारी ले लिया है, तो भी बराबर ये धंधा चालू है, इसकी लड़की उसके धंधा, उसका लड़का अच्छा है, इसका मिलान उससे करा, उसका मिलान उससे कराता फिरता है, कुंडली मिलाता है, बिजनेस की बात करता है, धंधे की बात करता है। पर अब तो हमने यहां तक देखा है कि वो ब्रह्मचारी महाव्रत ले लिया है, तो वे भी कुछ ग्रस्तों का उद्धार कर देते हैं ये योग्य संबंध बताकर, कुंडली वगैरह मिलाकर, ग्रह नक्षत्र बताकर, यानी वो भी दूसरे के बच्चे बच्चियों के शादी विवाह में की चिंता करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, प्रेशर डाल करके एक दूसरे से संबंध करने के लिए बाध्य तक करते हैं। यदि जैन दर्शन की वैज्ञानिकता से देखे तो उसको ये देखने के लिए अवसर है कि मैं कहां खड़ा हूं। ये आरंभ त्याग जो आठवीं प्रतिमा है, ये अपने खुद बनाकर खाने की जो बात है वो आठवीं प्रतिमा में जाके छूटती है। और जिन्हें सातवीं तक ली है, ख्याल में आया ना, तो उनको तो बना के खाने की बात ही है। अभी एक प्रसंग बनता है, मेरे मन में भी बहुत विकल्प आता है, उसकी चर्चा मैं कल के व्याख्यान में करूंगा। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते।